Om Shanti. Easy life for busy people. और इसके लिए है हमारे साथ में डॉक्टर मोहित गुप्ता जी. आप कहेंगे डॉक्टर साहब बिजनेसमैन इंडस्ट्री आध्यात्मिकता ये कौन सा इक्वेशन है, राइट? डॉक्टर साहब दिल्ली की जीबी पंत हॉस्पिटल और मौलाना आजाद हॉस्पिटल के बहुत बड़े एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट है. उन्होंने सोचा कि ये मेरे क्लिनिक के बाहर हॉस्पिटल में बिजनेसमैनों की और सब लोगों की इतनी बड़ी लाइन लगती है और ज्यादा करके सब हृदय की बीमारी लेके आते हैं, तो मुझे रिसर्च करके सोचे कि इसका रूट कॉज क्या है. और रूट कॉज है कि ज्यादा करके बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट अपने अपने तनाव में रहते हैं, तो मैंने पहले उनको ही इजी कर दूं तो फिर ये मेरी लाइन थोड़ी कम हो जाए. तो आप बहुत बड़े एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट है, साथ साथ में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर भी है जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर. एंड अच्छे टीचर होने के सौभाग्य से उनको हाल ही में डॉक्टर राधाकृष्णन डिस्टिंग्विश्ड टीचर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. और साथ साथ में और एक बार ताली आगरा रत्न अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया है. अब ये जो इक्वेशन आपको कहा कि कार्डियोलॉजी बिजनेस इंडस्ट्री इजी और वो भी ब्रह्म कुमारी में, सीधी बात है बचपन से वो राजयोगी रहे हैं. आज मैंने उनसे बात की, वो 32 सालों से पिछले 32 ईयर से राजयोग के रेगुलर प्रैक्टिशनर रहे हैं. आप शायद कोई भी आध्यात्मिक चैनल आप खोलो, पीस ऑफ माइंड है, आस्था है, संस्कार है, आप चाहे उनको एज ए स्पीकर देखेंगे या फिर कोई प्रोग्राम के एंकर देखेंगे, तो ये उनकी महारत है. मेडिकल फील्ड में उन्होंने कम से कम 50 के ऊपर उनके पेपर्स भी पब्लिश हो गए. बायोडेटा बहुत लंबा है, बट हम उनको सुने एंड एक बार फिर स्वागत करते हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी.
ओम शांति. गुड आफ्टरनून. दो दिन से आप सभी लोग बहुत अच्छी अच्छी मजेदार दिल को छू जाने वाली बातें कर रहे हैं. और अभी जब भाई जी ने इंट्रोडक्शन दिया तो उन्होंने कहा कि ब्रदर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो दिल के डॉक्टर हैं तो बातें दिल की ही करेंगे नेचुरली. अब दिल की बातें ना भी हों तो कम से कम कुछ बातें ऐसी जरूर होनी चाहिए जो हमारे दिल को छू जरूर जाए. होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आपने दो दिनों के अंदर जो भी ज्ञान का और प्रैक्टिकल नॉलेज का सेवन किया है उसको अगले आधे घंटे में हम लोग अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें और हमने अपने जीवन में किस तरह अप्लाई किया वो हम आपके सामने रखेंगे और आप ही इसका आंसर देंगे. तैयार हैं इस यात्रा के लिए? यस और नो? है ना. देखो जिंदगी में बहुत सुंदर बात किसी ने कही है कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम परफ्यूम और इत्र लगाकर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं. ऐसा होता है या नहीं होता? है ना? तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है. कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है. मजा तब है जब आपकी शख्सियत आपके किरदार से भी खुशबू आए. तो ऐसी शख्सियत ऐसा किरदार हम लोग बनाकर लेकर जाएं. ऐसा नहीं कि हम यहां पे सुन के गए और फिर बात गए, मुंबई गए, दिल्ली गए, जहां पर भी हम लोग गए फिर वही हमारी लाइफ स्टाइल हो जाता है. कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारे लाइफ के अंदर परमानेंट चेंज ले आए, हमारी लाइफ को, हमारे थॉट्स को एकदम टच करें. एक बहुत सुंदर बात आती है, कई बार हम लोग डॉक्टर्स को, बिजनेस पीपल को इन्वाइट करते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है. तो एक कवि ने बहुत सुंदर रूप से कहा है कि हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं. हर खुशी है लोगों के दामन में पर एक हंसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं. दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए हमारे पास वक्त नहीं. दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए हमारे पास वक्त नहीं. मां की लोरी का एहसास तो है, मां की लोरी का एहसास तो है, पर आज मां को मां कहने का हमारे पास वक्त नहीं, मां को मां कहने का हमारे पास वक्त नहीं। पैसों की दौड़ में ऐसा दौड़े, पैसों की दौड़ में ऐसा दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं। आंखों में है नींद भरी, आंखों में है नींद भरी, पर सोने का भी वक्त नहीं। पराए एहसासों की क्या बात करें, पराए एहसासों की क्या बात करें। जब अपने सपनों के लिए ही हमारे पास वक्त नहीं, तो ही बताए जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वालों को एक पल जीने का भी वक्त नहीं। तो अपनी जिंदगी में अपने लिए समय निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। अभी पिछले सेशन में मैं सुन रहा था कि हमारे अहम, हमारे ईगो के बारे में बात हो रही थी। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे ध्यान आती है। एक बार एक यंग लड़का था, वो यंग लड़का बहुत अच्छी तीरंदाजी करता था। धीरे धीरे तीरंदाजी करते करते वो अपने रैंक के अंदर आगे बढ़ता गया, सारे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बन गया। तो एक उसको घमंड आ गया कि मुझसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो एक दिन एक व्यक्ति के पास गया और उससे बोला कि मुझे कोई इस दुनिया में हरा नहीं सकता, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं इस दुनिया के अंदर। अभिमान आ गया था, ईगो आ गया था। तो उसने बोला, तुम ऐसी बात मत करो, गांव के कोने के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, उसे हरा कर दिखाओ, तब हम माने कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तो उसने कहा, ठीक है, तुम अगर ऐसा कहते हो तो मैं ये करता हूं। उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर गया और उससे बोला कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप तीरंदाजी की प्रतियोगिता में मुझे हरा कर दिखाइए। उसने कहा, बेटा मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मुझसे क्या चैलेंज करते हो। उसने कहा, नहीं, लोग बोलते हैं कि अगर मैं आपको हरा दूंगा तो मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। तो बीच मैदान में दोनों आए। उस यंग लड़के ने अपना तीर निकाला और सामने एक्यूरेट एक जगह पर निशाना लगाया, फिर एक और तीर निकाला और एक और तीर निकालकर पुराने निशाने को भेदते हुए निशाना उसने लगाया और बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखकर बोला कि क्या आप ऐसा कर सकते हो। तो उसने मुस्कुराते हुए दो तीर लिए और बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही उससे दुगनी गति से करके दिखाया। तो ये यंग लड़का जो है वो हैरान हो गया। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो मैं कहता हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उसने कहा, मैं स्वीकार करता हूं। उसने कहा, चलो मेरे पीछे। वो उसको गांव के कोने में ले गया जहां दो पहाड़ थे बड़े बड़े और हजारों फीट गहरी नीचे खाई थी। उन दोनों को एक पतली सी पगडंडी, एक झूलता हुआ झूला उनको कनेक्ट कर रहा था। उसके बीच में जाकर वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो गया, वो झूला हिल रहा था, और उस यंग लड़के से कहा, यहां पर बीच में आ जाओ। तो उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप। उसने कहा, बेटा आ जाओ, मैं भी खड़ा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बीच में आओ। वो कांपते हुए पांव से बीच झूले में जाकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना तीर निकाला और हजारों फीट गहरी खाई नीचे थी, सामने एक निशाना था, उसने एक्यूरेट निशाना लगाकर दिखाया और उस यंग लड़के को बोला कि बेटा क्या तुम ये भी करके दिखा सकते हो यहां पर। तो उस यंग लड़के के पसीने छूट रहे थे, उसके पांव कांप रहे थे, उसका मन विचलित था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से तीर निकाला, लेकिन तीर को जैसे ही छोड़ा वो आसपास भी कहीं उस निशाने के नहीं लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो उस बूढ़े व्यक्ति के चरणों में गिरा और उससे बोला कि महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे अभिमान आ गया था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ आप हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति उसको उठाया और गले लगाया और बहुत सुंदर बात उससे बोली। उससे कहा कि बेटा, धनुष और बाण की विद्या पर तुमने पूर्णतः निपुणता हासिल की है। यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुम्हें हर परिस्थिति के अंदर एक्यूरेट निशाना लगाने की समर्थता देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी कंट्रोल नहीं है। और क्योंकि तुम्हारा उस मन पर कंट्रोल नहीं है, तो परिस्थिति जरा सी भी विकट हुई तो तुम्हारा निशाना चूक जाता है। तो अगर तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें किस पर नियंत्रण करना पड़ेगा, किस पर करना पड़ेगा, मन पर करना पड़ेगा। तभी किसी ने कहा है कि जब मन कमजोर होता है तो परिस्थिति, आप पूछ रहे थे ना, परिस्थिति समस्या बन जाती है। इसे नोट करिएगा, जब मन कमजोर होता है तो परिस्थिति समस्या बन जाती है। जब मन स्थिर होता है, जब मन स्थिर होता है तो परिस्थिति चुनौती बन जाती है, लेकिन जब मन मजबूत और सशक्त होता है तो परिस्थिति अवसर बन जाती है कुछ करने का। तो अगर आज हम लोग यहां से जाते हैं तो किसको मजबूत करके जाना है बताइए? मन को मजबूत करके जाना है। आप जो भी सुन रहे हैं, जैसी भी बात सुन रहे हैं, आत्मा का सबसे इंपॉर्टेंट वाहन जो है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा मन है। तो मन को जब तक हम नहीं कंट्रोल करेंगे, हम इस दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो सारा ज्ञान जो है वो हमारी आत्मा और हमारे मन पर आकर स्थिर हो जाता है। तभी लोगों को प्रश्न आता है ना कि हमने सुना हम क्या करेंगे क्या करेंगे। कुछ नहीं करना, केवल अपने ऊपर फोकस हमको करना है। और इसके लिए बहुत सुंदर यात्रा में मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन उस यात्रा की ब्यूटी तब आएगी जब आप में से एक एक व्यक्ति यहां पर है वो हमारे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देगा। देंगे या नहीं देंगे बताइए? सभी लोग देंगे ना, तो आप देखेंगे आंसर्स आपके द्वारा ही निकलेंगे। आप कहेंगे अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा होता होगा। इतना प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे कि मुझे जो भी ज्ञान दिया जा रहा है वो मुझे सब ऑटोमेटिकली और ऑलरेडी मालूम है। आज हम लोग इतनी एडवांस दुनिया के अंदर हैं, हमारे पास सब कुछ है। आज दुनिया में ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं कि एक सेकंड के अंदर हम अपने मोबाइल के द्वारा या अमेरिका बात कर सकते हैं, या हम ऑस्ट्रेलिया बात कर सकते हैं, हम यूरोप बात कर सकते हैं। लेकिन साइंस ने आज कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बनाया कि हम अपने मन की गहराइयों में जाके अपने आप से एक मिनट भी बात कर सकें। आज बड़ी बड़ी दवाइयां हैं, बड़े बड़े डिवाइसेज हैं जिससे हम बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन आज साइंस कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना पाई जिससे हम मन की भावनाओं को रीड कर सकें, उनको हम कोई दवाई देकर परिवर्तित कर सकें। आज हम लोग मार्स पर पहुंच चुके हैं, आज हमारे यान जो हैं मार्स पर पहुंच चुके हैं, आज हम जीवन मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में मंगल है इसका हमें अभ्यास और आभास भी नहीं है। तो सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन के अंदर एक खोखलापन, एक खालीपन आ जाता है। दवाइयां हैं, धन है, दौलत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी सेटिस्फेक्शन वो हम खो चुके हैं। लोग कहते हैं कि जो सबसे धनवान है वो बहुत खुश है। हम कहते हैं यदि धन हमको खुशी दे सकता तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्या होना चाहिए था? सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। पर ऐसा है या नहीं है बताइए? आप लोग नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली है ही नहीं। कभी आपने सुना कि लीजिए 2000 रुपए, लीजिए 2 किलो प्यार बाजार से खरीद लाइए? हो ही नहीं सकता। कभी आपने सुना कि लीजिए 5000 रुपए, लीजिए 5 किलो शांति बाजार से खरीद लाइए? खरीद सकते हैं या नहीं बताइए? सभी लोग नहीं खरीद सकते। ये हमारे जीवन का मूल सत्य है कि जो हम जीवन में चाहते हैं वो हमको पैसा, हमारी धन, हमारी दौलत नहीं दे सकती। फिर भी हमने अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि जिंदगी को एक जंग बनाकर रख दिया है। सवेरे उठकर बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सलेटर दबता है हमारी जिंदगी का, और रात को आके एल्प्रेक्स नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, कमाना है, भागना है, और की भोजन की भूख जो है हमारी खत्म नहीं होती। मैं भी कई बार सोचता हूं, कई बार ऑपरेट करता हूं तो अपने मित्रों को मजाक में बोलता हूं कि कैसी कॉम्प्लेक्स हमारी लाइफ हो गई है, कितनी झंझट से परिपूर्ण आज के मानव की जिंदगी हो चुकी है। कुछ लाइनें ध्यान आती हैं जो बहुत सुंदर से कही हैं, जिसको मैं कई बार सिमरन करता हूं तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि कागज की कश्ती थी, कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था, कहां आ गए इस समझदारी की दलदल में, कहां आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। हाँ, देखो कि जिंदगी की इस जंजाल के अंदर हमारी जो स्माइल है, हमारा जो कंफर्ट है, हमारी जो खुशी है, उसको हम खो बैठे हैं। अपनी जिंदगी के पहले भाग में हम अपने स्वास्थ्य को खोते हैं और खूब सारा ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं, और जिंदगी के दूसरे भाग में खोए हुए पैसे से, खोए हुए स्वास्थ्य को दोबारा प्राप्त करने के लिए कमाए हुए पैसे को हम फिर गंवाते हैं। यही हमारी जिंदगी की आज साइकिल बन चुकी है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि दुनिया गर्म हो रही है, ये दुनिया केवल टेम्परेचर या दुनिया नहीं गर्म हो रही, आज हमारे एटीट्यूड, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी जिंदगी के स्वभाव और संस्कार भी आज गर्म हो चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर हमको गुस्सा आ जाता है, हम 10 बारी जिंदगी में बोलते हैं वो बहुत इरिटेटिंग है, वो हमको बहुत तंग करता है, उससे मेरा बात करने का मन नहीं करता, अब देखो उसकी बात बस मैं सुन नहीं सकता, सुन नहीं सकती, पूरे दिन इरिटेशन, मूड ऑफ, ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यही खेल हमारी जिंदगी में पूरे दिन चलता रहता है। और ब्लेम हम किसको करते हैं, व्हाटएवर इज हैपनिंग, मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, दूसरा व्यक्ति है। अगर इरिटेट मैं हो रहा हूं तो उसका रिस्पॉन्सिबल दूसरा व्यक्ति है, अगर मैं खुश हूं तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के व्यक्ति के ऊपर है। तो मेरी जिंदगी का सारा लोकस जो है, सारा कंट्रोल, आज रिमोट कंट्रोल मैंने किसको दे दिया है, किसको दे दिया है, दूसरे व्यक्ति को दे दिया है। खुशी मेरी है, शांति मेरी है, सारी प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल आज मैं दूसरे व्यक्ति को दे चुका हूं। तो इसी पूरे घनचक्र के अंदर मेरी लाइफ से एक भागती हुई जिंदगी बन जाती है, खुशी शांति जो है वो खत्म हो जाती है, इजीनेस जो है वो मेरी लाइफ से चली जाती है। अब जब इजीनेस चली जाती है और लाइफ ऐसी उलझ जाती है जैसे जलेबी उलझ जाती है, तो उसको कंफर्टेबल और सुलझाया कैसे जाए। हम बड़े मजाक में कई बार बोलते हैं कि अब जब जिंदगी उलझ ही चुकी है जलेबी की तरह, अब जब जिंदगी उलझ ही चुकी है जलेबी की तरह, तो क्यों ना चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, है ना, थोड़ी सी जिंदगी के अंदर मिठास भर ली जाए, थोड़ा सा कंफर्ट भर लिया जाए। तो तैयार है जिंदगी में मिठास भरने के लिए, बताइए, यस और नो, है ना, करना पड़ेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं कि जा रहे हैं, कपड़े तो अच्छे पहने हैं लेकिन मन पर 200 किलो का बोझा हम लोग लेकर जा रहे हैं। जब आप यहां से आज जाएं, इस रूम से, इस हॉल से आप बाहर निकले, तो आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, सारे प्रश्नों का उत्तर आज आप स्वयं यहां पर देकर जाएंगे और लाइट और रिलैक्स होकर जाएंगे। तो आपने इतनी सारी बातें यहां सुनी है ना, तो आपसे 3 और 4 प्रोमिसेस हम आपके द्वारा ही कराएंगे, और आप देखेंगे अगर आप उनको अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ जो है वो बहुत सुख से परिपूर्ण, बहुत कंफर्टेबल बन जाएगी। तो आज मैं आपको 3 कहानियां और 3 ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताऊंगा। पहली बड़ी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम सब डिसाइड करते हैं कि हम सब एक सुंदर सी यात्रा पर चलेंगे, हम सब आपके लिए बसेस कराएंगे, हम इकट्ठे जाएंगे, हम पहली बार मिले हैं, रास्ते में खाने पीने का हमारे पास सामान होगा, हम यहां से कहीं बढ़िया पिकनिक स्पॉट पर घूमने जाएंगे। उस यात्रा में हम सब साथ होंगे, हम एक दूसरे के साथ खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, अंतराक्षणी खेलेंगे, और उस यात्रा में घूमकर, खाते पीते जाकर शाम को हम घर वापस आ जाएंगे। कैसा आइडिया आपको सबको लगा, मजा आया या नहीं, यस और नो, एग्रीड, यस, एवरीबॉडी पीछे भी बताइए, यस, वंडरफुल आइडिया दैट वी ऑल गो ऑन अ जर्नी फॉर वन डे पिकनिक, एक दिन की पिकनिक के लिए हम जाएंगे, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन जब हम शाम को आएंगे हम नए मित्र बना चुके होंगे, एंड इट्स अ डे विच इज वेरी वेल स्पेंट, हम लोग नए मित्र और दोस्त बनाकर एंजॉय कर वापस आ जाएंगे। अब मैं इस कहानी के अंदर, इस यात्रा के अंदर छोटा सा ट्विस्ट करते हैं। अब मैं आपको अगले हफ्ते फिर बोलता हूं कि आज भी हम सब लोग उसी जगह पर जाएंगे, सेम डेस्टिनेशन है हमारी, हम लोग एक ही दिन के लिए जाएंगे, शाम को वापस भी हमको आना है, लेकिन आज सुनिएगा, आज हम लोग इकट्ठे नहीं जाएंगे, आज हम लोग एक दूसरे से रेस लगाएंगे कि कौन पहले वहां पर पहुंचेगा, कौन पहले वहां पर पहुंचेगा। जैसे ही मैं आपको ये बोलता हूं कि आज हम उसी यात्रा पर जाएंगे, लेकिन हम पिछले हफ्ते तो इकट्ठे गए थे, आज हम लोग एक दूसरे से रेस लगाएंगे, तो आप लोगों के मन में कैसे थॉट्स आने स्टार्ट होते हैं, कौन कौन बताएगा, केवल आधे मिनट के अंदर फटाफट बताते जाइए। कॉम्पिटिशन आएगा, और टेंशन, हाउ टू विन, स्ट्रेस आएगा, कॉम्पिटिशन, हाउ टू विन, कॉम्पिटिशन, यस, मैं सबसे पहले पहुंचू। देखो बहन जी कहती है कि मेरे साथ वाले मेरे हस्बैंड भी गाड़ी चला रहे हो लेकिन उनसे भी पहले मैं पहुंचू। मुझे मतलब नहीं है, अगर आज कंपटीशन है तो मुझे उसको जीतना है, मुझे उसको हराना है। एनीबडी एल्स पीछे भी बैठे हैं बताइए जी। साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स, यू सी एक वर्ड को हमने चेंज किया है, अकेले और टुगेदर। पिछले हफ्ते हम टुगेदर जा रहे थे, आज हम अकेले जा रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे ही हम अकेले रेस लगाते हैं, टुगेदर को हम लोग रेस में कन्वर्ट करते हैं, तो साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स आ जाती है। और कुछ बताएंगे? अकेले जाने का मन भी नहीं करेगा। वो जर्नी का जो इंजॉयमेंट था, जो सबको जाने का साथ का हमारे अंदर एक उत्साह था कि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है तो मैं अकेले जाकर क्या करूंगा। एनीबडी एल्स जी, जलन की भावना आएगी, नेगेटिव भावना आएगी, स्ट्रेस आ जाएगा। आप देखो मैंने कुछ, उन्होंने कहा पोस्टपोन कर देंगे, बाद में देखेंगे, जब सब साथ जाएंगे तब हम जाएंगे। तो आप लोग एक बात को सोचा आपने कि हमने केवल जिंदगी की यात्रा के अंदर एक वर्ड को ट्रांसफॉर्म किया। हम सब साथ की जगह जब हम जिंदगी के अंदर एक दूसरे के साथ क्या लगाते हैं, रेस लगाते हैं, तो हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। आज हमने जिंदगी में क्या किया है, क्या किया है हमने अपने बिजनेस के अंदर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, हमने अपनी जिंदगी को क्या बनाया है, रेस बना लिया है। तो हमारी जिंदगी की पहली सच्चाई है, सब लोग जोर से बोलिए, लाइफ इज नॉट अ रेस। अगर हम जिंदगी को कंफर्टेबल और खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है अपने मन के अंदर से ये भावना निकाल देना कि मैं एक रेस के अंदर हूं, रेस में मैं नहीं हूं। आप देखो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी परसीव इट। जब हम साथ जा रहे थे तो हम खुश थे, जब हम साथ जा रहे थे तो हमारे मन के अंदर केवल पॉजिटिव भावनाएं थी, जब हम साथ जा रहे थे तो हम लोग किसी भी तरीके से अपने आप अपने नए फ्रेंड्स बनाते थे, इंजॉय करते थे। और जब हम साथ जा रहे थे तो रास्ते में अगर हम रोकें गाड़ी को, आप जर्नी को इंजॉय भी करते थे। लेकिन जब हम रेस लगाते हैं, जब हम रेस लगाते हैं तो क्या हम गाड़ी को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे रास्ते में, हाँ या नहीं बताइए, नहीं रोकेंगे। अरे छोड़ो भूख गई, बाहर में एक घंटे पहले वहां पहुंच जाए, खाना वहीं खा लेंगे। वो कहेगा अरे पापा देखो देखो कितना सुंदर सीन है। अरे छोड़ सुंदर सीन क्या है, हमें जीतना है, हमें रेस लगाना है, हम सारी जर्नी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। आप देखो आज हमने अपने प्रोफेशन में क्या किया है, आज हमने अपने प्रोफेशन में अपनी जिंदगी के अंदर आज किसी ने हमको बताया कि जिंदगी हमारी एंजॉय करने के लिए नहीं है, हमारे बिजनेस एक रेस की तरह है, एक कंपटीशन की तरह है, मुझे हराना है, मुझे जीतना है। और जब हम रेस लगाते हैं, जब हम दूसरे को हराना चाहते हैं तो हम ओवरटेक करते हैं गाड़ी को या नहीं करते बताइए, करते हैं, सही तरीके से करते हैं, कभी कभी कोई नहीं देख रहा होता तो रॉन्ग ओवरटेक भी करते हैं। रेड लाइट को स्किप करते हैं नहीं करते, रेड लाइट भी स्किप कर लेते हैं। जब स्पीड ब्रेकर आता है जहां हमें रुकना चाहिए, हम अपने गाड़ी को उस पर उछाल भी देते हैं, अपनी लाइफ को भी डेंजर में डालते हैं और दूसरे की लाइफ को भी डेंजर में डालते हैं। ये है जिंदगी की रेस का परिणाम कि भागना है, कमाना है। और हम भूल जाते हैं कि वी आर पीपल, वी आर नॉट प्रोग्राम्ड डिवाइसेस, कंप्यूटर नहीं है हम लोग कि सवेरे किसी ने चाबी भर दी कि करो 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 करो, कमाओ भागो सवेरे से लेकर शाम तक, बस भागना है, पैसा कमाना है। इसी रेस के अंदर हम लोग निकल जाते हैं। एक बारी बड़ी सुंदर बात आपको आपके बिजनेस के लिए स्पष्ट करता हूं। एक बारी एक व्यक्ति जो था बहुत सुंदर बढ़िया बढ़िया फल बेचता था और एक और व्यक्ति था वो भी आम बेचता था। तो एक लेडी जो है उसके पास फल लेने गई, तो उसके पास जब फल लेने गई वो हर एक को देता था। तो उसने उससे कहा कि आपके फल कैसे हैं, उसने कहा बहुत बढ़िया हैं, बहुत मीठे हैं। तो उसने उससे फल ले लिए, घर गई, घर जाकर जब सब लोग बैठे हुए थे फैमिली मेंबर्स, उसने फलों को काटा, फलों को काट कर सबको खिलाया, तो आम बिल्कुल खट्टा था, बिल्कुल खट्टा आम था। तो जैसे ही उसके मन में आया कि खट्टा, सबने पूछा कहां से लिया, मैंने, उसने कहा मैंने उससे लिया। तो उसके मन से उस आम वाले के लिए कैसी भावना निकलेगी, अच्छी या बुरी भावना निकलेगी, बताइए, बुरी भावना निकलेगी। जब कल कोई व्यक्ति उसके पास जाएगा कि तुमने उससे आम लिया, मैं क्या उससे आम लूं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, लें उससे या ना लें? आप कहेंगे बिल्कुल मत जाना, वो घटिया, वो बोलेगा अच्छा लेकिन देता गंदी चीज है, है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कल आप एक और आम वाले के पास जाते हैं और वो बिजनेस करता है, आप उससे पूछते हैं कि भैया आम कैसे हैं, उसने कहा जी आम है तो इतने रुपए किलो, लेकिन आज मत लीजिए, आज ठीक नहीं है, आज आपके मतलब का नहीं है, आप कल आइएगा, कल मैं आपको बढ़िया चीज दूंगा। आप चले जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आता है, आप कहते हैं घर में जाके आज एक दिन रहने देते हैं, मैं कल आम लेकर आऊंगी। कल आप उससे आम लेके आते हैं, 2 रुपए उसके आम महंगे होते हैं, घर आते हैं आप खाते हैं, बहुत टेस्टी आम निकलता है, बहुत टेस्टी आम निकलता है, आपके सब घर वाले खुश होते हैं, जो पड़ोसी आते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, आप उस व्यक्ति को ब्लेसिंग्स देते हैं, पॉजिटिव भावनाएं देते हैं, और कोई व्यक्ति आपसे पूछता है इतने बढ़िया आम कहां से लाई, आप बताएंगे कि मैं उससे लाई, तुम भी उससे जाकर लेना, अगर वो अच्छी चीज होगी तो ही आपको देगा, वरना वो आपको नहीं देगा। तो उस व्यक्ति ने एक दिन तो अपने बिजनेस का नुकसान कराया, लेकिन उसने जब जेन्युइन चीज दी तो अपने बिजनेस में ना केवल पैसा कमाया, लेकिन उसने साथ में क्या कमाई, दुआएं और ब्लेसिंग्स कमाई। तो आज हम सबके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन में एक प्रश्न अपने आप से करें और समझें कि जो बिजनेस दुआएं कमाता है, वो चाहे एक दिन पैसा कम भी कमाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखेंगे वो दुआओं के साथ साथ तुगना तिगना पैसा जरूर कमाएगा, क्योंकि वो गुडविल अपनी इतनी क्रिएट करता है, वो जेन्युइन काम करता है। तो इसीलिए आज हम सबको अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी जिंदगी की रेस के अंदर ये समझना आवश्यक है कि इस शब्द को अपनी लाइफ से हमको हटाना है। तो आज पहली प्रॉमिस जो आप सब लोग जो यहां पर बैठे हैं, सब लोग प्रॉमिस करेंगे कि आज के बाद मैं रेस लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, बताइए, नहीं लगाना, नहीं लगाना। आप देखो अपनी जिंदगी को कंफर्टेबली करिए, बिजनेस करिए बट इंजॉय करते हुए करिए, दूसरे को साथ लेते हुए चलिए, आप किसी को सहयोग देके, यदि आपका मित्र आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा कर रहा है, जेलिसी मत क्रिएट करिए। आप एक दिन कम कमाएंगे, परमात्मा आपको दुआओं के साथ अगले दिन 4 गुना बिजनेस अलोंग विद दुआएं जरूर देगा। तो अपनी लाइफ के अंदर कंफर्टेबिलिटी और नेगेटिविटी कभी भी नहीं रखनी है, अपने मन के अंदर यही कि मुझे कमाना है, मुझे भागना है, अपने मन के अंदर ये परिवर्तन जरूर लाना है। आपको एक बड़ी सुंदर बात सुनाता हूं, जो हमारे जीवन में आप ध्यान रखें ना तो हमारा जीवन सदा के लिए परिवर्तित हो जाएगा। एक व्यक्ति था कुम्हार, बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था, कुम्हार जानते हैं ना जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो उसने एक दिन एक बहुत सुंदर चिलम बनाई, चिलम जिससे हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, उसको डेकोरेट किया, उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाकर साइड में रख दिया। लोग आ रहे थे, उसे खरीद रहे थे, खरीदने के लिए बैठे हुए थे, बट पता नहीं उसके मन में सडनली क्या आया, उसने उस बनाई हुई चिलम को तोड़ दिया, तोड़कर साइड में फेंक दिया। जो मिट्टी कुमार के साइड में रखी हुई थी, उसने कहा कि हे कुमार, तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई, तूने इसको तोड़ क्यों दिया? तो उसने कहा, नहीं मेरा मन बदल गया, मैं चिलम नहीं, मैं एक सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी मुस्कुराते हुए उसे बहुत सुंदर बात बोली, गौर फरमाइएगा, मिट्टी उससे बोली कि हे कुमार, तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तो उसने कहा, कुमार तू पहले चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी क्या दूंगी, शीतलता दूंगी। तो अगर हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर हर व्यक्ति को खुशी देना चाहते हैं तो सबसे पहले खुशी और शांति हमको कहां रखनी पड़ेगी, अपने मन के अंदर शीतलता को धारण करना पड़ेगा। आज सवेरे मैं सुन रहा था, बहुत लोग कह रहे थे बहुत अच्छा लगा, सुन के आनंद आ गया, ऐसा लगा जीवन के अंदर चेंज आया। लेकिन उस चेंज के साथ आज हम सब लोग आत्माएं अपने यहां पर बैठे हुए अपने जीवन में एक प्रण जरूर करें, और प्रण ये कि अपने मन के अंदर हर व्यक्ति के लिए पॉजिटिविटी, हर व्यक्ति के लिए शीतलता मुझे जरूर रखनी है। जिसको हम पता है क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी जी में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आई एम अ नो नेगेटिव पर्सन। क्या बोलते हैं, जोर से बोलिए, नो नेगेटिव पर्सन। कोई कुछ आए, कोई कुछ कहे, कोई कुछ भी बात कहे, मेरे को इससे फर्क नहीं, मेरे को हर एक को पॉजिटिव चीज देनी है। कल मैं ट्रेन में आ रहा था दिल्ली से, तो एक विद्वान बैठे हुए थे, महात्मा थे, तो उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति के चेंज होने से थोड़ी ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के चेंज होने से चेंज का आरंभ तो जरूर हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइए। आरंभ हो सकता है। अगर हम ये कहें कि अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो अगरबत्ती मंदिर में खुशबू दे, और जब अगरबत्ती को हम बदबू वाली जगह पर कूड़े पर रख दें तो अगरबत्ती कहें नहीं यहां तो बहुत बदबू है, मैं नहीं इसको चेंज कर सकती, मैं तो यहां पे मैं भी बदबू दूंगी, तो ऐसे काम चलेगा या नहीं चलेगा। अगरबत्ती अपना काम करती रहती है, वो खुशबू देती रहती है, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उसको न्यूट्रलाइज करती रहती है, और जब लोग देखते हैं इससे असर नहीं पड़ रहा तो वो और खुशबू उधर आकर जला देते हैं। तो इसीलिए आज हम सब आत्माओं को, सबको ये समझ कर जाना है कि जब हम यहां से एनरिच होकर जा रहे हैं, एम्पावर होकर जा रहे हैं, तो हम परमात्मा की भुजाएं बनकर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि घर जाकर या कहीं पर हमें रास्ते में कोई नेगेटिव बोले तो फिर हमारा मन शिथिल हो जाए, हमारा मन परेशान हो जाए, नहीं, हमको उसको पॉजिटिव एनर्जी देकर पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है। कैसे देनी है वो हम थर्ड स्टेज के अंदर बात करेंगे, बट पहली प्रॉमिस आप सब एग्री करते हैं, यस और नो? बिल्कुल यस। केवल 4 दिनों के लिए आपको ऐसा करना है, मैं आपसे 1 महीने के लिए नहीं मांगता, मैं आपसे पूरी लाइफ टाइम भी नहीं मांगता, लेकिन आप इस एक्टिविटी को केवल 4 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए जब आप देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे नो नेगेटिव पर्सन, आप देखेंगे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब हम फिर यात्रा पर वापस आ जाते हैं। जब आप देखते हैं कि हम जीवन की यात्रा के अंदर चल रहे हैं, तो जीवन की यात्रा में जब हम लोग इकट्ठे जा रहे होते हैं तो तब हम ज्यादा खुश होते हैं, जब हम अकेले जाते हैं तब हमको ज्यादा खुशी होती है, बताइए। जब हम इकट्ठे जाते हैं, जब हम इकट्ठे जाते हैं बस के अंदर हम इंजॉय करते हैं, हमको टाइम की कोई सीमा नहीं रहती, हमको टाइम से कोई मतलब नहीं। अगर हमें 5 बजे पहुंचना है, हम 7 बजे भी पहुंचे तो हमको उसकी चिंता नहीं, क्यों? क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे हैं, हम रास्ते में रुकते हैं, पिकनिक करते हैं, कोई अच्छी सी जगह देखने के लिए आती है तो वहां पर उठकर हम साइट सीइंग भी करते हैं, हम फोटोज भी क्लिक करते हैं, हम पूरे ग्रुप के साथ पिक्चर्स भी खिंचवाते हैं, लेकिन खुश होते हैं, समय की सीमाओं को हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम अकेले जाते हैं तो अकेले ना तो हम अपनी गाड़ी को रोकते हैं, ना हम साइड में खाना खाने के लिए अपनी गाड़ी को 1 सेकंड के लिए हॉल्ट देते हैं, और हम अकेले उस मंजिल पर रेस जीतकर पहुंच भी गए, लेकिन जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं जो मेरे क्लोजेस्ट थे, मेरे सगे संबंधी थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उनको तो मैं कहां छोड़ आया हूं, बहुत पीछे छोड़ आया हूं, और मैं मंजिल पर अकेले आ भी जाता हूं तो वो खुशी मेरे जीवन के अंदर नहीं रहती है। मैं आप सब लोगों से एक बात पूछता हूं कि जब हम यात्रा पर जाते हैं ट्रेन में या एरोप्लेन में, तो वहां पर एक बहुत सुंदर लाइन लिखी होती है, आप सब लोग इसका उत्तर दीजिएगा, क्या लिखा होता है उसमें? लिखा होता है हैव अ वेरी प्लेजेंट, जोर से बताइए, क्या लिखा होता है हैव अ वेरी प्लेजेंट? कभी ये लिखा होता है हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन, यस और नो? जिंदगी में जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंजिल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तभी जिंदगी की दूसरी सच्चाई है कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज अलोंग दी जर्नी, यात्रा के अंदर खुशी जीवन की यात्रा के अंदर इस समय है। और हम लोग क्या करते हैं, कि एक साल और कमाएं, दो साल और चलें, पांच साल हम और कार्य कर लें, फिर हम लोग जिंदगी की यात्रा के अंदर खुशी को धारण करेंगे या खुशी हमको लाइफ के अंदर मिलेगी। ऐसे समय पर खुशी हमको कभी भी नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो हम समझते हैं हम खुद और अचीव करें, हम एक डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, तब हमको खुशी मिलेगी। लेकिन जब हम बिजनेसमैन बन जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे भी सेटल हो जाएं, तब हमको जिंदगी में खुशी होगी, तब हम टाइम निकालेंगे। लेकिन तब भी हमारे पास समय नहीं होता। फिर जब बच्चे बड़े होकर उनके बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं अब हम समय निकालें, नहीं अब तो पोते धोते हो गए, अब हम उनके साथ खेलेंगे, तब भी हमारे पास समय नहीं मिलता। हम अपनी खुशी को उसके अंदर ही ढूंढते रहते हैं, हम सारे मेटेरियलिस्टिक ट्रेजर्स के अंदर अपनी खुशी को ढूंढते रहते हैं। अभी हम लोग लास्ट वीक ही नॉर्वे और स्वीडन और डेनमार्क गए थे, वहां हम देख रहे थे कि मेटेरियलिस्टिक ट्रेजर्स के अंदर लोगों को कितनी खुशी मिलती है। वो अपनी खुशी को अपनी गाड़ी, अपनी धन, अपनी दौलत, अपने कपड़ों के द्वारा हम तोलते हैं। मैं आप सब लोगों से एक बात पूछता हूं, ऑनेस्टली बताइएगा, ऑनेस्टली, अगर हमने एक नई गाड़ी ली, ब्रांड न्यू गाड़ी ली और वो ब्रांड न्यू गाड़ी जो है हम लेकर अपने शोरूम से बाहर निकले, तो क्या हम खुश होंगे या नहीं? नेचुरली बताइए, यस और नो? नेचुरली हम लोग खुश होंगे, नेचुरली, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं। हमने नए कपड़े पहने, हम बहुत खुश होंगे, हम चाहेंगे लोग इसको अप्रिशिएट करें, हमारे कपड़ों को देखकर हमें कहें कि वाह बहुत सुंदर कपड़े हैं, बड़ी बढ़िया गाड़ी आपने ली है। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो मैं नेचुरली मेरे अंदर से खुशी उत्पन्न होती है। जैसे ही मैंने नई गाड़ी ली, मैं गाड़ी लेकर बाहर फर्स्ट चौराहे पर आया और वहां पर एक रिक्शा वाला आया और उसने आप नहीं देखा, राइट और लेफ्ट नहीं देखा और करके मेरी गाड़ी पर एक स्क्रैच लगा दिया। मेरी खुशी को क्या होगा? जोर से बताइए, क्या होगा? कौन ले गया? वो रिक्शा वाला ले गया। गाड़ी तो मेरी थी लेकिन वो स्क्रैच गाड़ी पे बाद में लगेगा। पहले स्क्रैच कहां पे लग जाता है? मेरे दिल पे लग जाता है स्क्रैच। यानी मैंने अपनी खुशी को किसमें डाला था? गाड़ी में डाल दिया था। मैंने एक नई शर्ट खरीदी, शर्ट पे दाग लगा तो मेरी खुशी गायब हो गई। मैंने एक नए जूते पहने, जूते पर दाग लगा तो मेरी खुशी गायब हो जाती है। मैं अपनी सारी खुशी को अपने मटेरियलिस्टिक ट्रेजर्स के अंदर, अपनी भौतिक लाइफ के अंदर ढूंढता रहता हूं। और यही कंफर्टेबल भावना कि मेरे पास इतने लाख, इतने करोड़ रुपए हैं, मेरे पास एक नई गाड़ी है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, यही चीज मुझे एक सूडो खुशी की आभास कराती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन अपनी खुशी को, अपनी शांति को उस गाड़ी के अंदर रखकर लॉक कर देना, अपनी खुशी को अच्छे कपड़ों के अंदर इन्वेस्ट कर देना, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल बात सुनाता हूं। एक बारी क्या हुआ कि सिकंदर का नाम आप सब लोग सुने होंगे। सिकंदर जब इस देश और दुनिया को जीत कर जा रहा था तो भारत में अपने उसने सेनापति को बुलाया, सेलिकस को, और बोला कि मैं हर जगह से एक नायाब चीज ले जा रहा हूं, मैं भारत से भी एक नायाब तोहफा अपने देश ले जाना चाहता हूं, तो यहां से क्या लेकर जाऊं? तो चाणक्य का जमाना था, तो उसके सेनापति ने कहा कि यहां के महात्मा बड़े महान होते हैं, तो आप यहां के महात्मा को लेकर अपने साथ जाइए। तो उसने कहा ठीक है, आप यहां के एक महात्मा को पकड़कर मेरे पास लाइए। तो एक महात्मा को पकड़कर उसके सामने उपस्थित किया गया। वो महात्मा मुस्कुराते हुए, योग में तल्लीन उसके सामने उपस्थित हुआ। सिकंदर ने उससे कहा कि मैं विश्व विजेता हूं, मैं सिकंदर हूं, आप हमारे साथ हमारे देश चलिए। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसे बोला कि सिकंदर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे देश नहीं जाऊंगा। सिकंदर को गुस्सा आ गया, उसने अपनी तलवार निकाली, तलवार निकालकर उस महात्मा की गर्दन पर रखी और उसने कहा कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं विश्व विजेता हूं, मैं सिकंदर महान हूं, तुम्हें मेरे साथ मेरे देश चलना ही पड़ेगा। तो महात्मा हंसने लगा और मुस्कुराते हुए उससे बोला कि सिकंदर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे देश बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और एक बात और बताता हूं, अभी तुमने दो बातें बोली हैं और दोनों बातें 100% बिल्कुल झूठ बोली हैं। सिकंदर एकदम हैरान हो गया, ऐसा कभी उसे किसी ने बोला नहीं था। उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने पहली बात बोली कि आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप ठीक बोलते हैं, आप मेरे टुकड़े टुकड़े शरीर के तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी मन मेरी आत्मा को आप कभी भी मार नहीं पाएंगे। और जब भी मैं दोबारा जन्म लूंगा तो मैं अपनी इस सकारात्मक इस योगी सोच के साथ जन्म लूंगा और यही ज्ञान विश्व की सर्व आत्माओं के अंदर मैं दूंगा। सिकंदर ने अपनी तलवार नीचे कर ली और उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसने कहा कि मैंने दूसरी बात क्या गलत बोली। तो महात्मा मुस्कुराने लगा, उसने कहा मुस्कुराते हुए कि अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आप विश्व विजेता हैं, बट सच बात बताऊं तो आप तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हैं। तो सिकंदर बोला, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तो महात्मा ने बोला, सिकंदर क्रोध को मैंने अपने वश में किया है और जिस क्रोध को मैंने अपने वश में किया है कुछ सेकंड पहले उसी क्रोध ने तुम्हें अपने वश में कर रखा था, तो तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। तो सिकंदर की आंखों में आंसू आ गया, उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र के बाहर मेरा हाथ ऐसे खाली रखना ताकि लोगों को पता लगे कि जिस व्यक्ति ने विश्व को जीता था जब वो गया था तो कैसे गया था, खाली हाथ गया था। तभी आप देखो किसी ने बहुत सुंदर रूप से कहा भी है, बहुत सुंदर रूप से कहा भी है कि जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए। क्या मिली थी? जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, बीत रही है कागज के पत्ते कमाने के लिए, बीत रही है केवल कागज के पत्ते कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर, क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कब्र में जेब है न कफन में अलमारी, न कब्र में जेब है न कफन में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। तो आप देखो कि अगर जिंदगी में हम लोग ये समझ कर जाएं कि हमारे साथ क्या हमारे साथ जाएगा, तो वो हमारे पुण्य कर्म, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी सकारात्मक थॉट्स हमारे साथ जाएंगे। हमारी खुशी जो हम लोग अर्न कर जाते हैं, जो हम हर मोड़ पर दूसरे व्यक्ति को देते हैं, वही हमारे साथ जाएगी। तो दुनिया में सबसे मूल्यवान सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे धनवान है, वह है जो सबसे ज्यादा चरित्रवान है। क्यों? क्योंकि पैसा किसी को अमीर बना सकता है मेरे दोस्तों, लेकिन किसी व्यक्ति को अमीर बना सकता है, लेकिन रहीसियत किसी व्यक्ति के अंदर उसके संस्कारों, उसके वैल्यूज, उसके मूल्यों के द्वारा आती है। तो अमीर बनने से ज्यादा हमको अपने संस्कारों को रहीस, उनको मूल्यवान बनाना है। एग्री करते हैं सभी लोग या नहीं, बताइए? नेचुरली तो अपने जिंदगी में दूसरा सत्य जो हमको रखना है कि धन जरूर कमाइए, कोई नुकसान उसके अंदर नहीं है, लेकिन उस धन को कमाने की रेस के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपनी खुशी ही खो बैठे। आज हम लोगों ने अपनी जिंदगी को टेक्नोलॉजी बेस्ड बना दिया है। सब लोग मोबाइल फोन लेकर चलते हैं, आईफोन लेकर चलते हैं, सवेरे व्हाट्सएप फेसबुक के साथ हमारी जिंदगी आरंभ होती है, रात को इसी के साथ मैसेज टाइप करते करते जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है। अपडेट करना, फेसबुक पे बात करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, इसी तरह हमारी जिंदगी चल रही है। हमारी जिंदगी आज हाईटेक तो हो चुकी है, लेकिन मेरे दोस्तों आज भी जिंदगी में मूल मान्यता है कि हाईटेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या चाहिए, हाई टच चाहिए। हमारी जिंदगी में कंपैशन चाहिए, हमारी जिंदगी में प्यार चाहिए, हमारी जिंदगी में खुशी चाहिए। तो आज बहुत आवश्यक है कि इस सत्य को हम अपनी जिंदगी में अपने जहन के अंदर धारण करें कि टेक्नोलॉजी तो हम अपने साथ रखें, लेकिन टेक्नोलॉजी से ज्यादा कंपैशन और लव हम अपने साथ रखें। मैं आप सब लोगों से एक बात पूछता हूं, सब लोगों से एक एक व्यक्ति आंसर करिएगा। जब हमारी तबीयत खराब होती है, जब हमको कभी कभी बीमारी होती है, कभी ऐसा ना हो कि हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हों, तो उस समय हमें मीडिया अपना मैसेज ध्यान आता है या हमको एक ही इच्छा होती है कि हमारे परिवार वाले हमारे साथ बैठे? बताइए क्या इच्छा होती है? नेचुरली उस समय सारी टेक्नोलॉजी, सारा धन, सारी दौलत, सब कुछ हम खो बैठते हैं, उसको हमें कोई इच्छा कोई मतलब नहीं होती। उस समय केवल एक इच्छा होती है कि कि मेरा कोई अपना मेरे साथ आकर मुझसे दो मिनट क्या करे, बात करे। और जब वो बात करता है तो मेरी सारी बीमारी, मेरा जहन जो है, बहुत मन जो है हल्का बन जाता है। ये शो करता है कि टेक्नोलॉजी से भी कहीं आगे कहीं ज्यादा टच बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में क्या टच हम लेकर चल रहे हैं। और जिंदगी का तीसरी स्टोरी और तीसरा सत्य जो मैं आपके सामने रखता हूं कि कौन सा ट्रेवल आपको बहुत एंजॉयमेंट है। अगर हम लोग ऐसा बोझा कैरी करके चले तो क्या हम अपनी यात्रा को एंजॉय कर पाएंगे या नहीं, बताइए? नहीं कर पाएंगे। तो जिंदगी की यात्रा को एंजॉय करने के लिए, जिंदगी की यात्रा को स्थूल यात्रा के लिए भी कहते हैं, लेकिन जिंदगी की यात्रा को एंजॉय करने के लिए बहुत आवश्यक है कि ट्रैवलिंग लाइट इज द की टू एंजॉयमेंट। जिंदगी की लाइट ट्रैवल करना, इजी ट्रैवल करना, ये बहुत 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 आवश्यक है। लेकिन आज क्या है कि हम लोग शारीरिक रूप से बोझा तो नहीं भी कैरी करते, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग अपने मन पर कुछ ना कुछ बोझा कैरी करते रहते हैं। करते हैं सब लोग हमें है? किसी की कोई बात, किसी की कोई नेगेटिविटी, किसी की कोई चीज हम लोग अपने मन पर कैरी करते रहते हैं। मैं आप सब लोगों को एक बड़ी सुंदर बात सुनाता हूं और उसके बाद आप सब लोग ऑनेस्ट उत्तर मुझे देंगे, मैं भी दूंगा और आप सब लोग भी देंगे। एग्रीड, यस और नो? लेकिन उस उत्तर देने के बाद एक प्रॉमिस भी आपको करनी पड़ेगी, और वो प्रॉमिस अगर आपने कर दी तो आप देखेंगे आपका मन, आपकी लाइफ इस मोमेंट से ही लाइट हो जाएगा। एक बारी क्या हुआ कि कुछ बच्चों की क्लास लगी थी, कुछ बच्चों की क्लास के अंदर सब बच्चे आपस में लड़ते रहते थे, खेलते भी थे, लेकिन मास्टर जी के पास जाके बार बार उनको कंप्लेन करते थे, मास्टर जी ये बच्चा मुझे परेशान करता है, इसने मुझे मारा है, इसने मुझे तंग किया, इस तरह बार बार उनको परेशान और बार बार बॉदर करते रहते थे। एक हफ्ता, दो हफ्ता बीता, तीसरे हफ्ते मास्टर बिल्कुल परेशान हो गया। उसने कहा छोड़ो, ये ऐसे नहीं मानेंगे, यंग बच्चे थे, उसने कहा कि तुम कल सब आओगे ना तो अपने साथ एक खाली थैला लेकर आना। तो बच्चों ने कहा ठीक है, ले आएंगे। तो जब अगले दिन क्लास में आए तो खाली थैला लेकर आए, तो सामने एक बहुत बड़ी आलू की टोकरी वहां पर रखी हुई थी, आलू की टोकरी बहुत बड़ी रखी हुई थी। तो उस आलू की टोकरी में रखी हुई मास्टर जी ने बोला कि अब तुम लोग रोज कंप्लेंट करते रहते हो कि ये मुझे करता है, ये मुझे नुकसान करता है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें 10 बच्चे परेशान करते हैं तो अपने बैग में 10 आलू डाल लो, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें 20 लोग परेशान करते हैं तो 20 आलू डाल लो, अगर तुम्हें लगता है 2 लोग परेशान करते हैं तो 2 आलू डाल लो। सब बच्चों ने कहा जोश में, किसी ने 20 डाले, किसी ने 30 डाले, किसी ने 15 डाले, किसी ने 5 डाल लिए, सबने अपने थैलों को बिल्कुल लोड कर लिया। उन्होंने कहा मास्टर जी अब हमें क्या करना है? उन्होंने कहा अब तुम्हें यह करना है कि अगले एक हफ्ते तुम जहां पर भी जाओ, तुम खेलने जाओ, तुम सो, तुम स्कूल के अंदर आओ, तुम अपने माता पिता के साथ जाओ, तुम गाड़ी में बैठो, तुम कहीं पर भी घूमने जाओ, तुम्हें इस आलू के बोरी को अपने साथ सदा रखना है। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या बात है, हम कर लेंगे, यंग लड़के थे। तो यंग बच्चे, एक दिन बीता, दो दिन बीते, चार दिन, पांच दिन बीत गए, छठे दिन जिसके पास 20 आलू थे उसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी उठाने के अंदर, जिसके पास 5 आलू थे उसे कम दिक्कत हो रही थी, दिक्कत उसे भी हो रही थी। सातवें आठवें दिन जिसके पास 20-30 आलू थे उसमें से कुछ आलू गलने लगे और गलने की बदबू भी आने लगी, लेकिन बदबू सबसे पहले किसको आ रही थी? उसको आ रही थी। आठवें दिन वो बदबू पूरी क्लास के अंदर इतनी फैल गई कि उन सब बच्चों ने अपने आलू की टोकरी लाई और मास्टर जी के आगे फेंकी और बोला मास्टर जी ये क्या करा रहे हैं आप, अब हमें क्या बताना चाहते हैं आप, देखो कि इनमें से इतनी बदबू आ रही है, और ना केवल बदबू आ रही है, ये आलू को ढोते ढोते हम लोग परेशान हुए हैं, जहां हम जाए हम इंजॉय नहीं कर सकते, हम लोग परेशान रहते हैं, इसको हमें उठाना पड़ता है। तो मास्टर ने मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, यही समझाना चाहता हूं कि जब तुमने अपने मन में नेगेटिव लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए नेगेटिव बोझा ढोया तो तुम्हारा मन ही सबसे पहले परेशान होता है। मैं आप सब लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि यदि कोई व्यक्ति आप लोगों के लिए बुरा करता है, आज से 5 साल पहले किसी ने बहुत बुरा आपके लिए किया, कई बार हम प्रश्न करते हैं ना कि आप बताइए हम कैसे उसको माफी करते हैं, उसने हमारे लिए इतना बुरा किया, और आज 5 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद वो व्यक्ति सडनली आज आपके सामने आ जाए जिसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया था, तो आपके मन से उसके लिए कैसी भावना निकलेगी? ऑनेस्टली बताइएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव निकलेगी। सभी एग्री करते हैं, यस और नो बताइए? नेगेटिव। क्यों निकलेगी? क्योंकि हम भी क्या कैरी कर रहे हैं, आलू कैरी कर रहे हैं। क्या हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बताइए, गड़बड़ कर रहे हैं आप। देखो कि हमारा मन जो है परमात्मा ने सबसे सुंदर वाहन दिया है, उस मन के अंदर हमने क्या भर लिया, किसी के नेगेटिव विचार भर लिए, किसी ने हमको बुरा बोला उसको हमने अपने मन में स्थान दे दिया। चॉइस हमारी थी लेकिन हमने अपने मन को बोझिल कर लिया। फिर किसी व्यक्ति ने हमको और बुरा बोला, हमने कहा इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, देखो इसने मुझे कितना दुखी किया है, इसके लिए भी हमने थोड़ा सा स्पेस और ऑक्यूपाई कर लिया, और धीरे धीरे अपने मन को हमने कूड़ेदान बनाकर रख दिया। एक व्यक्ति आया उसको नेगेटिव बोला, दूसरा व्यक्ति आया इसने मेरे को ऐसे बोला, उसके लिए भी हमने नेगेटिव किया। इस तरह जब हम अपने मन में नेगेटिव भावना रख लेते हैं तो हमारा दिल और मन दोनों भारी हो जाते हैं। दिल के अंदर नफरत और मन के अंदर हम लोग चिंताओं को स्थान दे देते हैं। और परमात्मा ये कहता है कि जिस व्यक्ति के दिल के अंदर नफरत है, हेट्रेड है, घृणा है, और जिस व्यक्ति के मन के अंदर बोझा है, वो व्यक्ति ना कभी खुद खुश रह सकता है ना कभी दूसरों को खुशी दे सकता है। आप जितना भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लो, जो भी आप कर लो, लेकिन ना हम कभी खुद खुश हो पाएंगे ना हम किसी को खुशी दे पाएंगे। तो यदि हम लोग अपने जीवन के अंदर लाइटनेस चाहते हैं, अपने जीवन को हम खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तो इस कचरे को हमें बाहर निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा, बताइए? निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एनीबॉडी? माफ करना पड़ेगा। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माफी कर देना और आगे बढ़ जाना। सुना है ना, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। लाइटनेस, बिल्कुल लाइटनेस, लाइट, नेगेटिविटी रखना ही नहीं। आप देखो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, ऐसा नहीं कि जब भी हमने किसी के लिए नेगेटिव भावनाएं अपने मन में रखी, देखो सुनने में आसान लगता है, सारी बातें लगेंगी, कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें इसको करना है। तो आपको सेकंड प्रॉमिस जो देनी है कि आई एम अ नो नेगेटिव पर्सन, नो नेगेटिव पर्सन के साथ आज के बाद कोई नेगेटिव चीज होगी तो मैं क्या कर दूंगा, तुरंत क्या करूंगा बताइए, माफी कर देंगे। देखो, माफी करना दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। क्षमा की शक्ति जिसके पास है वो परमात्मा के पास ही होती है। अगर वो शक्ति किसी व्यक्ति के पास है तो वो व्यक्ति इस दुनिया में ऊपर उठ जाता है। शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि संपन्न मंजू उसी का जिसमें शक्ति विजय की, यानी जिसमें क्षमा करने की शक्ति है वही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति आपके पास आए, है ना, घर में किसी ने नेगेटिव बोला, तो छोटी सी बात, हम क्योंकि काउंसलिंग करते हैं, हम देखते हैं जरा जरा सी बातों में, बहुत छोटी छोटी बातों पे आज हमारे घर में झगड़ा हो जाता है। सब्जी ठंडी है गर्म है, इस बात पे झगड़ा। कोई लेट आया, बिना समझे इमोशनल कनेक्ट नहीं हुआ, झगड़ा। माँ बाप ने बच्चों की बात नहीं सुनी, बच्चों ने माँ बाप की बात नहीं सुनी, झगड़ा। वो अलग खाना खाएंगे। हस्बैंड कहीं लेट मीटिंग में हो गया, वाइफ को अकोमोडेट नहीं किया, झगड़ा। घर आए तो ऐसा लगता है कि वेलकम होता है गुस्से से, बिल्कुल लेट आए, दरवाजा खोला, पीठ फेरी और अंदर चले गए, अपने आप खाना ले लीजिएगा। बच्चों की बात नहीं सुनी जाती, इतनी इतनी सी बातों पे केवल एक चीज की प्रॉब्लम है, हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम दूसरों को बोलते नहीं कि अगर कोई बात नहीं, अगर हो भी गया, ऊंच नीच हो भी गई, कोई फर्क नहीं। अभी मैं मजे की बात सुन रहा था, जैसे दीदी सुना रहे थे कि वाइफ हस्बैंड से ज्यादा कमाती है, आप इशू सोचिए, इस बात पे झगड़ा, ईगो, और कोई बात नहीं है। आप देखो, आई 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 करते हुए, मैं बकरी की तरह करते हुए हम लोगों ने अपनी लाइफ को हेल बना कर रख दिया है। केवल मैं अहम अहम अहम, और हम भूल जाते हैं कि व्हेन आई इज रिप्लेस्ड बाय वी, इवन इलनेस बिकम्स व्हाट, वेलनेस बन जाती है। केवल अहम को हम जब सबके साथ कंबाइन कर लेते हैं तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल बन जाती है, लेकिन हम उस अहम को अपनी जिंदगी में एक मेजर टूल लेकर चलते रहते हैं। किस बात का ईगो? परमात्मा सबसे पहले आकर हमें यही बताता है कि बच्चे तुम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तुम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते अगर तुम मेरे साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन लगाते हो, मेरे साथ योग लगाते हो, तो मैं करण करावनहार तुम्हारे साथ पॉजिटिव एनर्जी देकर अच्छे कर्म तुमसे करा सकता हूं। मैं आपको बहुत सुंदर बात बताता हूं जो हमारे कर्मों की गति को सदा के लिए स्पष्ट कर देगी। कर्मों की गति के ऊपर आदरणीय उषा बहन का बहुत सुंदर लेक्चर आपने अटेंड किया होगा या होने वाला होगा, लेकिन वाल्मीकि का नाम आपने सुना है? जिन्होंने लिखी थी वाल्मीकि जो है एक बहुत बड़े डाकू थे, जानते हैं आप इस बात को, बहुत बड़े डाकू थे। तो क्या हुआ कि वो जब जंगल के अंदर जा रहे थे, कैसे उनका परिवर्तन हुआ, तो जंगल के अंदर जा रहे थे तो कुछ महात्माओं के सामने आए, तो उसने उन महात्माओं को पकड़ लिया और उनको मारने लगा। तो उसने कहा, महात्माओं ने उनसे कहा कि वाल्मीकि एक बात बताओ, तुम ये काम किसके लिए करते हो? तो उसने कहा कि ये काम मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, के पालन पोषण के लिए करता हूं। तो उन महात्माओं ने उनसे कहा कि जो कर्म तुम कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट तुम अर्न कर रहे हो, क्या तुम्हारे घर वाले इस कर्म के भी सहभागी बनेंगे? तो उसने कहा क्यों नहीं बनेंगे, जो मैं कर्म करता हूं मैं उनके लिए करता हूं, तो जो इस कर्म का फल है वो भी मेरे साथ शेयर करेंगे। तो महात्मा ने कहा कि तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ। तो उसने कहा, लगा वाल्मीकि को ये तो भागने वाले हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैं तुमको रस्सी से बांध कर जाऊंगा ताकि तुम यहां से भागो ना। उसने कहा हम कहीं नहीं भागेंगे, तुम हमें बांध कर जाओ। तो वो अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर अपने परिवार वालों से पूछा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, लोगों को लूटता हूं, तुमको सारी सुख सुविधाएं देता हूं, तुमको खाना देता हूं, क्या जो कर्म मैं करता हूं उस कर्म के सहभागी भी आप बनोगे? तो उसके परिवार वालों ने सोचकर बोला कि नहीं, हमको खाना खिलाना तुम्हारा कर्म है, लेकिन जो कर्म तुम करते हो उस कर्म का फल हम क्यों लेंगे, उस कर्म का फल तो तुम भोगोगे ना, तुम्हें हमारे पालन पोषण करना यह तुम्हारा कर्तव्य है। तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा कि देखो, जिनके लिए मैं उतना कुकर्म करता हूं वो मेरे कर्मों में मेरे सहभागी नहीं बनेंगे। वो महात्माओं के पास गया और उनसे बोला कि आप ठीक बोलते थे कि जो कर्म मैं कर रहा हूं उन कर्मों के सहभागी वो नहीं बनेंगे, तो मैं इस कर्मों जो मैंने नेगेटिव किए हैं मैं इसके लिए क्या करूं? तो उसने कहा अब तुम तपस्या करो, तुम इन कर्मों को छोड़कर, नेगेटिव चीजों को छोड़कर इतनी तपस्या करो कि तुम्हारे सारे विकर्म जो हैं वो विनाश हो जाएं। तो इसीलिए हम ये बात जरूर समझे कि एक एक सोच जो हम अपनी लाइफ में एमिट करते हैं, एक एक थॉट जो हम अपनी लाइफ में एमिट करते हैं, उस विचार की शक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो नई विचारधारा का आरंभ हमारे जीवन के अंदर कर सकता है। तो आज बहुत आवश्यक है कि जब हम यहां से जाएं तो हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी सोच, अपनी विचारधारा की शक्ति को परिवर्तित कर जाएं। और ये परिवर्तन केवल एक चीज के द्वारा हो सकता है, ये तब हो सकता है जब हम अपनी जिंदगी के कुछ क्षण परमात्मा की याद के अंदर जरूर दें। आप देखो, पूरे दिन हम अपने शरीर के लिए कार्य करते हैं, लेकिन ये शरीर जो है, जो इस पूरे शरीर, जो मन जो इस शरीर को चलाता है, उस मन के लिए आज हम 5 से 10 मिनट भी नहीं देते। आप देखो, जब मोबाइल है, मोबाइल को हम पूरे दिन यूज करते हैं, लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कनेक्ट करते हैं। हम मोबाइल के इतने एडिक्ट हैं कि जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, हमारे पास चार्जर नहीं होता, तो आजकल हम क्या लेकर चलते हैं अपने साथ, पावर बैंक भी लेकर चलते हैं ताकि वो डिस्चार्ज ना हो जाए। लेकिन मोबाइल हमारा चार्ज रहना चाहिए। तो हमारा मन रूपी जो मोबाइल है, हमारा आत्मा रूपी मोबाइल है, उसको चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं पूरे दिन में, शायद हम एक क्षण भी अपने जीवन में नहीं दे पाते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये चीज आपके मन में सदा सदा के लिए क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पर हमारा परमात्मा का जो ज्ञान है वो कभी भी ये नहीं कहता कि आपको घर में कुछ छोड़ना है, कभी भी नहीं। वो कभी परमात्मा आकर ये नहीं कहता कि घर बार छोड़ो और सन्यासी बन जाओ। अरे, परमात्मा इस विश्व का पिता जो है वो तो घरों को और सुंदर और परिपूर्ण बनाने आता है, वो घर छोड़ाने थोड़ी ना आता है। लेकिन वो ये कहता है कि अपनी विचारधारा को इतना सुंदर बनाओ, अपने जीवन के अंदर अपनी सोच को इतना सकारात्मक बनाओ कि तुम्हारे जीवन से ही खुशबू आने लगे। लेकिन वो कब आएगी? जब हम सुप्रीम परमपिता परमात्मा से अपने मन को जोड़ते हैं। इसी जर्नी का आरंभ जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमने अपने 8 साल की आयु के अंदर किया था। हमारे माता पिता भी डॉक्टर थे, हमारी लौकिक सिस्टर भी थी। हम 80 के अंदर पहली बार आए थे, फिर 85 के अंदर यहां पर आए थे। घर में गए आर्य समाजी परिवार, आईएएस ऑफिसर्स का परिवार, रेवोल्यूशन हुआ घर के अंदर। अरे डॉक्टर के बच्चे ये बन गए, ब्रह्मा कुमार बन गए, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, आप क्या कर रहे हो, ऐसा रेवोल्यूशन हमारे घर के अंदर हुआ। और हमने केवल परमात्मा को अपने जीवन के अंदर आगे रखा। हमने कहा कि यदि परमात्मा मेरी जीवन की नैया को का खेवैया है तो नैया इधर हिलेगी डुलेगी तो सही, लेकिन डूब सकती है नहीं डूब सकती? कभी भी डूब नहीं सकती। आप देखो, हमने और हमारी सिस्टर ने लौकिक जीवन के अंदर प्रण किया कि हम अपने कार्यशैली के अंदर भी इतना आगे प्रोग्रेस करेंगे कि लोग कहें कि ब्रह्मा कुमार भी होने चाहिए तो इस लेवल के होने चाहिए। हमने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई की, एमडी की पढ़ाई की, कार्डियोलॉजी की पढ़ाई की, सब पढ़ाइयों के अंदर टॉप किया, 18 गोल्ड मेडल लिए, लेकिन परमात्मा की पढ़ाई, परमात्मा की मुरली आज इस समय तक, इस दिन तक, 30 जुलाई 1985 से लेकर आज दिन तक हमने एक भी दिन मुरली मिस नहीं की, एक भी दिन मुरली मिस नहीं की। हम दुनिया में जहां भी ट्रेवल करते हैं, अमेरिका, यूरोप, जहां पे भी हम लोग जाएं, हम लोग अपने साथ अपना स्पिरिचुअल इक्विपमेंट साथ लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल का चार्जर आप सब साथ लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते? ऐसे हम अपने आत्मा को चार्ज करने के लिए भी शक्ति जो है हम साथ लेकर जाते हैं। उस परमात्मा को अपने जीवन में आने दीजिए, उससे डरिए नहीं, है ना। परमात्मा को अपने जीवन में स्पेयर व्हील की तरह यूज मत करें। स्पेयर व्हील गाड़ी का कब यूज होता है? जब गाड़ी पंक्चर हो जाती है। जैसे ही पंक्चर हुई, स्पेयर व्हील ध्यान आता है, अरे कहीं वो ठीक हो, कहीं उसके अंदर हवा कम ना हो, फिर फिट करते हैं, बच गए भैया, है ना, बिल्कुल ठीक हो गए। परमात्मा कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे स्पेयर व्हील नहीं, मुझे स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करो। जब तुम मुझे अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर सक्सेस तुम्हें सदा 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 मिलेगी ही मिलेगी। और यही परमात्मा की नॉलेज, परमात्मा के ज्ञान की ब्यूटी है। हर धर्म, हर वेद, हर शास्त्र, किसी भी धर्म के लोगों को आप यहां पर देखें, कोई गुरु नहीं है, सब परमात्मा की नॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उससे योग लगाते हैं, उसके द्वारा चलाई गई मुरलियों का रसा स्वादन हम लोग डेली करते हैं और अपने क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज किया है। जो लोग 5-6-7 बजे उठते हैं, हम आधा घंटा पौना घंटा अर्ली उठकर अपने मन को इतना एनर्जाइज कर लेते हैं कि पूरे दिन कार्य करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, अप्स एंड डाउन को फेस करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। आज देखो, कहीं पर कुछ भी हो जाता है, लोग परमपिता परमात्मा से शांति और दया की भीख मांग रहे हैं। कल हुआ, टर्की के अंदर रिवोल्ट हुआ, फ्रांस के अंदर लोगों को कुचल दिया गया। आज के मानव की सोच क्या हो चुकी है? स्पिरिचुअल स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, हर प्रकार से आदमी आज पागल हो चुका है कि मैं शांति को कैसे प्राप्त करूं। लेकिन परमात्मा कहता है, शांति तुम्हें इधर उधर जाकर नहीं मिलेगी, शांति के लिए तुम्हें अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को मुझ परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। तुम शरीर के द्वारा जब परमपिता परमात्मा को याद करते हो तो तुम्हारा योग तुम्हें प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। जब परमपिता परमात्मा को परम आत्मा कहा जाता है, परम शरीर नहीं कहा जाता, किसी भी धर्म, वेद और शास्त्र के अंदर उसे परमपिता परम आत्मा कहा जाता है, तो आप ही सब बताइए कि हम उसकी संतान आत्मा होंगे या शरीर? बताइए जोर से, नेचुरली, लॉजिक है ये, लॉजिक। लेकिन कितना समय हमको ये ध्यान रहता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, एक सेकंड भी हमको पूरे दिन के अंदर ध्यान नहीं रहता है। और फिर हम परमात्मा को क्या याद करते हैं? शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रमय जीवन हमारा 1% भी नहीं बन पाता है। हम पाठ करते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन जीवन बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जीवन के अंदर धारणा 0.1% भी नहीं हो पाती। फिर हम भागते रहते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग परेशान हैं, हम लोग बहुत इस दुनिया से थक चुके हैं। तो परमात्मा कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो मुझे अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने दो। मन को बिल्कुल शांत सवेरे और शाम। थर्ड प्रॉमिस जो आपको करनी है कि जिंदगी के जीवन का आरंभ मॉर्निंग के अंदर हम 5 से 10 मिनट शांति और योगाभ्यास के अंदर करेंगे, और एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह जो रात को अपना अकाउंट क्लोज करके चेक करके लॉक करके आता है, जब हम सोएंगे तो ये नहीं कि बस लॉक किया और एकदम खाना खा के सो गए, टेलीविजन देखते हुए सो गए, नहीं, 10 मिनट मेडिटेशन कर हम लोग जरूर आज पूरे दिन जीवन में हमने क्या कर्म किए इसको हम सोचकर फिर परमात्मा को अर्पण करके सोएंगे। सभी प्रॉमिस करते हैं, यस और नो बताइए। ये प्रॉमिस, ये चीज अपने साथ सदा लेकर जाना, हर जगह जहां आप जाते हैं 5 से 6 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको एक सेंटर जरूर मिलेगा। हम आपको ये नहीं कहते कि आप जरूर इस टाइम पर आइए, आप ये करिए, लेकिन परमात्मा के ज्ञान का सेवन एटलीस्ट जरूर जाकर वहां पर योग का अनुभूति आप जरूर करिए, जहां पर भी आप जाते हैं। आज भी अपने जीवन में मैं ऑपरेट करता हूं, अगर मुझे 6 बजे भी जाना हो, 7 बजे भी, लंबी लंबी लिस्ट होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने देखा जब परमात्मा मेरे आगे उसको मैं रखता हूं तो मेरी पूरा डे का जो शेड्यूल है वो ऑटोमेटिकली सब सेट होता हुआ जाता है। मुझे दीदी की लास्ट वीक की आज्ञा हुई कि मोहित भाई तुमको आना है, मैंने कहा जरूर आऊंगा। फ्राइडे ऑपरेट किए 40 केसेस, सैटरडे पोस्ट ऑप राउंड दिया, शाम को 4 बजे घर आया, शाम रात को ट्रेन पकड़ी, आज लेक्चर देके शाम को घर जाके कल सीधे मैं 6 बजे ऊटी के अंदर पहुंचूंगा। परमात्मा की शक्ति हमको इतनी एनर्जी देती है। और आप भी देखो, आपका एक एक व्यक्ति का बिजनेस जो है ना, जिसका आधार स्तंभ अगर हम परमात्मा को बना लेते हैं, आप देखेंगे खुशियों से परिपूर्ण आपका जीवन हो जाएगा। 2 पैसे कम ऊपर नीचे होंगे भी, लेकिन शांति और खुशी इतनी जीवन में आएगी आप कहेंगे आनंद आ रहा है, जीवन जीने की रियल मजा हमको आ रहा है। तो अनुभूत करना चाहेंगे इस चीज का या नहीं करना चाहेंगे? कब से करेंगे? अभी से, कल से, या वापस अपने कार्यस्थान पर जाकर करेंगे? बताइए। अभी इस मोमेंट से हमको इस चीज की अनुभूति करनी है। लास्ट चीज मैं आपको सुना के फिर 1 मिनट हम मेडिटेशन में बैठ के वाणी को विराम देंगे और सब बहुत साइलेंस में उठेंगे कि एक बारी एक एरोप्लेन जा रहा था। एरोप्लेन जब जा रहा था तो उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची जो थी वो वीडियो गेम खेल रही थी। तो सडनली एरोप्लेन में बहुत तेज टर्बुलेंस चालू हो गई। जैसी टर्बुलेंस चालू हुई, एक महात्मा उसके बराबर में बैठा था, सब लोग परमात्मा को याद करने लगे, वो भी अपना जप तप करने लगा, नहीं उस बच्ची पर कोई असर नहीं पड़ा, वो अपना आराम से गेम खेल रही थी। तो उस महात्मा ने उससे बोला, बिटिया क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं अपना वीडियो गेम खेल रही हूं। कहते, बेटा ये वीडियो गेम खेलने का समय नहीं है, ये तो परमात्मा को याद करने का समय है। देखो एरोप्लेन डगमग हो रहा है, कभी भी हम गिर सकते हैं। तो उसने अपना वीडियो गेम साइड में रखा और उससे बोली कि अंकल मैं आपको बताऊं, इस प्लेन के पायलट मेरे पापा हैं और मुझे पता है कि वो इस तूफान से हमें बहुत सहज रूप से निकाल जाएंगे और मैं भी सेफली घर पहुंचूंगी और आप भी सेफली घर पहुंचेंगे, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। और फिर अपना गेम उठाया और गेम खेलने में वो मस्त हो गई। तो इसी तरह जब हमको अपने जीवन में ये रहता है कि परमपिता परमात्मा सदा मेरे साथ, मेरे दिल के अंदर है, हर कर्म में मेरे साथ है, तो जीवन में कोई भी समस्या आई परमात्मा कहेगा, बच्चे ऐसे कर, इस समस्या का समाधान ऐसा कर, इस तरह करता जाएगा तो तू अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो ये कब होगा? जब हम परमपिता परमात्मा को अपने जीवन के अंदर आने देंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा कदम हमको नहीं उठाना है, केवल अपने सोच, अपने मन की विचारधारा को जब हम चेंज कर देते हैं तो हमको विश्वास हो जाता है कि हमारे जीवन में जो बेस्ट है ना, द बेस्ट इज येट टू कम। एग्री करते हैं सभी लोग, यस और नो? तो चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं थक गए, गिर गए, बिल्कुल ना, चेहरा एकदम, परमात्मा के बच्चों का चेहरा कैसा होता है? खुशी से भरा हुआ होता है, खुशी से भरा हुआ। आपको आखिरी खुशी की बात सुनाता हूं और उसके बाद हम लोग आधा मिनट मेडिटेशन में बैठ के बहुत साइलेंस के अंदर यहां से जाएंगे, जैसे फरिश्ते जाते हैं ना ऐसे जाएंगे, ऐसा नहीं शोर करते हुए, बात करते हुए नहीं, बिल्कुल एक्सपीरियंस करते हुए, आज परमात्मा की याद में उसको भोग लगाते हुए आप भोजन खाएंगे तो आप देखेंगे इतना आनंद आएगा आपको, उस भोजन के अंदर ऐसा लगेगा ये दुख भंजन भोजन है ना। तो किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती, मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पना नहीं मिलती। तो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहना,
परमात्मा का यही संदेश है कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं तो सदा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखना, उसको सदा अपने साथ रखो, अपने दिल में समाया हुआ रखो। हाँ देखो, जिंदगी का जो मार्ग है वो बहुत खुशनुमा और रिलैक्स बन जाएगा। ये आपकी अपनी यात्रा है, कभी विचलित मत होना। आप परमात्मा की वो भुजाएं हो, जो मैं समझता हूं अगले बिजनेस विंग के अंदर आज तो 400-500 लोग बैठे हैं, अगले जुलाई के अंदर जब कॉन्फ्रेंस होती है आप लोग ही 4-4 लोगों को लाकर यहां पर खड़े होंगे और आपके एक्सपीरियंसेस हम सेशन यहां पर रखेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंसेस यहां पर सुनाएंगे। एग्री करते हैं सभी लोग या नहीं? करना है आप लोगों को। और आप देखेंगे ये नहीं कि अगले साल फिर एम्पावर होने के लिए आ गए, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को एम्पावर होके ये नॉलेज दूसरों को देनी है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत साइलेंस में हम लोग बैठेंगे और फिर सब लोग बहुत शांति से उठेंगे, बिल्कुल परमात्मा की याद में उठेंगे और उसी याद में जाते हुए फरिश्तों की तरह भोजन को ग्रहण करेंगे।
सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु।